धौला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतारं नमो सिद्धानं नमो आययानं नमो वज्जायानं नमो लोये सवसाऊनं त्रिभुवन शिरसे हरये भवभयगभादुनिगदे पणौ सिद्धे जीवत्थान समलिन गुण चोलियम ओच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है उसके यह चूली का है, अंतिम है यह। अभी यहाँ जीवस्थान पूर्ण होगा इस पुस्तक के बाद, पहला खंड। अभी हम आए हैं छठी पुस्तक के 12वें नंबर के पृष्ठ पर। यह अरविंद भाई ने ये जो लाया है लिखकर, ये सूत्र किसे कहना, विभाषा किसे कहना वगैरह वगैरह, चूलिका किसे कहना, उसकी बात है। सूत्र तो उसको कहते हैं जिसकी रचना संक्षिप्त शब्दों से हुई हो, मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में भी, शब्द भी और अक्षर भी। दूसरी पद्धति से उसका डेफिनेशन बताए जिसमें थोड़े से असंदिग्ध पदों के द्वारा सार रूप में गूढ़ तत्व का निर्णय किया हो उसे सूत्र कहते हैं। पेज नंबर 12 है, 12 नंबर का पेज है, और मैं पुस्तक में से नहीं पढ़ रही हूँ, इन्फॉर्मेशन पढ़ रही हूँ। दूसरे वृत्ति सूत्र भी एक शब्द आता है, यानी जिनकी शब्द रचना संक्षिप्त हो और जिसमें सूत्रगत अशेष अर्थों का संग्रह हो, यानी सूत्र में जो पूरा अर्थ बताया अशेष यानी कुछ बाकी रखे बिना, उसे वृत्ति सूत्र कहते हैं। चूर्णी उसको कहते हैं जिसमें बीज पद रूप उपदेश का विश्लेषणात्मक विवरण किया है, उसे चूर्णी या वृत्ति कहते हैं। बीज पद किसको कहना, तो जो बीज पद अनंत अर्थों के ज्ञान के कारणभूत हो उसे बीज पद कहते हैं। इन्हें कषाय पाहुड़ की गाथा में, गाथा सूत्रों में ऐसे बीज पद प्रचुरता से पाए जाते हैं। एक होती है टीका, वृत्ति सूत्रों के प्रत्येक पद का व्याख्यान करना टीका, प्रत्येक पद एक एक शब्द लेकर उसको विस्तार से समझाना। और वार्तिक किसको कहते हैं, तो वृत्ति सूत्रों के आधार पर किया गया विशेष विवरण उसको वार्तिक कहते हैं, निश्लोक वार्तिक, राजवार्तिक जो है ना वार्तिक। एक शब्द आता है पंजिका, पंजिका यानी वृत्ति सूत्रों के विषय पदों को स्पष्ट करने वाले विवरण पंजिका कहते हैं। एक होती है सूत्र परिभाषा, परिभाषा ने हम कहते हैं डेफिनेशन वगैरह, तो प्रकृत में उपयोगी जो अर्थ समूह गाथा सूत्रों में निबद्ध है या अनिबद्ध है उस सबको ग्रहण कर विस्तार से अर्थ की प्ररूपणा करना, गाथा में नहीं भी बताया हुआ उसको भी कह देना। अब जो हमारा विषय चल रहा है चूलिका, उसके लिए कहते हैं चूलिका यानी विशेष व्याख्यान। हमने कल इसकी डेफिनेशन देखी थी, उक्त या अनुक्त व्याख्या अथवा उक्त अनुक्त अर्थ का संक्षिप्त व्याख्यान, संक्षिप्त व्याख्यान उसका समरी देना। ऐसे तीन प्रकार चूलिका शब्द का अर्थ जानना चाहिए, यानी सभी सर्व अनुयोग द्वारों से सूचित अर्थों की विशेष प्ररूपणा करने वाली ही चूलिका हो ऐसा कोई नियम नहीं है, यानी सभी अनुयोग उसमें लेना ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं, विशेष कोई कुछ विषयों पर विशेष विवरण हो सकता है, किंतु एक या दो या सर्व अनुयोग द्वारों से सूचित अर्थों की विशेष प्ररूपणा करना वो चूलिका है। अब कल एक विभाषा शब्द भी आया था ना, सूत्र विभाषा, यानी गाथा सूत्रों का उच्चारण कर उनके पदच्छेद आदि के द्वारा जो अर्थ परीक्षा की जाती है वह सूत्र विभाषा है। बाकी गणी 11 अंग के ज्ञाता को कहते हैं, वाचक 12 अंग के ज्ञाता होते हैं, आदि आदि बातें यहाँ बताइए। अभी हमारा विषय शुरू करते हैं। हमने ये बात कल से शुरू की थी, एक कर्म कौन कौन से मूल प्रकृतियां, क्योंकि इस अधिकार का नाम है प्रकृति समुत्कीर्तन। प्रकृतियां है इतना बताएंगे तो उन वहां बताया था कि ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, उसके बाद वेदनीय कर्म है, मोहनीय कर्म है, यहां तक अपनी बात हो गई थी। अब आयु कर्म की बात यहां पढ़ेंगे 12 नंबर के पृष्ठ पर, आउम 9वां सूत्र। आयु कर्म है जो भवधारण के प्रति जाता है वह आयु कर्म है। जो पुद्गल मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा, जो पुद्गल ने ये आयु कर्म के बारे में बता रहे वो पुद्गल है, तो क्यों उसके बंध हुआ, क्यों वो परिणमित हुआ कर्म रूप, तो कहते मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा। मिथ्यात्व आदि में किसको लेना प्रेरणा बेन? कषाय योग, हाँ, चार यहाँ बताए, पांच भी बताते हैं, बात एक ही है, एक ही है, अविरति को या असंयम को एक ही बात है। तो मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा नरक आदि भव धारण करने की शक्ति से परिणत होकर, ये कर्मों में शक्ति ऐसी हो जाती है, क्यों, जीव के मिथ्यात्व आदि परिणामों के द्वारा, कि वो कैसे योग पुद्गल में कौन सी शक्ति आ जाती है, ये परिणत होते वो भव धारण करने की शक्ति से परिणत। आयु की बात हो रही ना यहाँ पर, मिथ्यात्व के लिए कहेंगे जीव प्रोमान माया लोप रूप परिणमाने के कारण, ये उनमें शक्ति होती है, अलग अलग कर्मों की शक्ति यहाँ बताई जाती है तो पुद्गल, परंतु जीव के ही परिणामों से उसमें ऐसी निमित्त पने की योग्यता बन जाती है। जीव में निविष्ट होते हैं यानी वह बनते हैं, वे आयु इस संज्ञा वाले होते हैं। शंकाकार पूछते उस आयु कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, उसका समाधान, देह की स्थिति अन्यता हो नहीं सकती। देह की स्थिति यानी ये देह चल रहा नहीं, यानी ये देह नहीं छूटना, इस अन्यथा अनुपपत्ति से आयु कर्म का अस्तित्व जाना जाता है, यानी आयु कर्म न हो तो देह की स्थिति नहीं बन सकती। नामम, नाम कर्म है जो नाना प्रकार की रचना निष्पन्न करता है वह नाम कर्म है। शरीर संस्थान सहनन वर्ण गंध आदि कार्यों के करने वाले जो पुद्गल जीव में निविष्ट है वे नाम संज्ञा वाले हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी उनका इन नाम कर्म का यह कार्य है, शरीर है, संस्थान है, सहनन वगैरह वगैरह, स्पर्श रस गंध वर्ण। शंकाकार पूछते हैं उस नाम कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है, उसका समाधान, शरीर संस्थान वर्ण, वो वर्ण हुआ वर्ण आदि कार्यों के भेद अन्यथा हो नहीं सकते, इस अन्यथा अनुपपत्ति से नाम कर्म का अस्तित्व जाना जाता है। हम देखते हैं ना जीव अलग अलग है तो उनकी जो हाइड बॉडी अलग होती है, उनकी जो संस्थान अलग होते हैं, सहनन अलग होते हैं, ये सब जो जुदा जुदे रचना दिखाई देती है, उनके वर्ण जुदे जुदे हैं, तो उसी से नाम कर्म का अस्तित्व समझ में आ जाता है। गोदम, गोत्र कर्म है जो उच्च अथवा नीच कुल को ले जाता है वह गोत्र कर्म है। मिथ्यात्व आदि बंध कारणों के द्वारा जीव के साथ संबंध को प्राप्त। एवं उच्च और नीच कुलों में उत्पन्न कराने वाला उद्गल स्कंध गोत्र इस नाम से कहा जाता है। अंतरायम च, अंतरायम चेदी, अंतराय कर्म है जो दो पदार्थों के अंतर अर्थात मध्य में आता है वह अंतराय कर्म है। अंतर आय, अच्छा, दान लाभ भोग और उपभोग आदि को में विघ्न करने में समर्थ तथा अपने कारणों के द्वारा जीव के साथ संबंध को प्राप्त हुआ। ये कारण तो बता दें, मिथ्यात्वादि कारण उद्गल स्कंध अंतराय इस नाम से कहा जाता है। मूल प्रकृतियां इतनी अर्थात आठ ही होती है, इस बात के ज्ञान कराने के लिए सूत्र में इति यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। इस विषय में यह उपयुक्त श्लोक है। इन्हें इति शब्द क्यों यूज होता है उसके लिए श्लोक बता रहे ऊपर। हेतावेवं प्रकारादौ व्यवच्छेदे विपर्ये प्रादुर्भावे समाप्तौ च इति शब्दं विदुर्बुधा। हेतु यानी इति शब्द कहाँ कहाँ आता है, तो हेतु के लिए, एवं के लिए भी आता है, प्रकार आदि हम कहते ना इत्यादि के लिए इत्यादि, मराठी में भी इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि प्रकार आदि, व्यवच्छेद विपर्य प्रादुर्भाव और समाप्ति के अर्थ में इति शब्दों को विद्वानों ने कहा है। यानी इति नहीं अला अंतिम है, तीसरी इति बता दिया, इसलिए मूल प्रकृतियां आठ ही है। शंकाकार, यह कैसे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियां आठ ही है? उसका समाधान, आठ कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले कार्यों से पृथकभूत कार्य पाया नहीं जाता, इससे जाना जाता है कि मूल प्रकृतियां आठ ही है। अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय के समागम से उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा था ना एक समय में कितने परमाणु ग्रहण करता है जीव, तो कहते अनंत तो कारमाण वर्गणा ग्रहण करता है, और एक एक कारमाण वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं, जो अनंत का प्रमाण है, अनंत अभव्यों से अनंत गुण है, सिद्धों के अनंत विभाग, ये तो एक एक समय में इतने ग्रहण करते हैं और एक एक समय वो कन्वर्ट होते हैं आठ कर्मों में, और ऐसी सत्ता में तो ऑलरेडी अनादि से पड़े हुए हैं, उसमें से एक समय प्रबोधन निकलता चला जाता है और एक एक बनता है, तो डेढ़ गुणा अनिगुणित समय प्रबोध इतने तो सत्ता में पड़े ही रहते हमेशा। यह कहते हैं अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय के समागम से उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियों के द्वारा एक एक जीव प्रदेश पर संबद्ध अनंत परमाणुओं के द्वारा अनादि स्वरूप से संबंध को प्राप्त अमूर्त भी यह जीव मूर्तत्व को प्राप्त हुआ। देखो क्या कहना चाहते हैं, जीव तो अमूर्तिक है, अरूपी है, परंतु अनादि से जो बंध है उसके लिए कुछ कारण नहीं, क्यों बांधना, तो ये अनादि से ही, तो अनादि से है तो ये कर्म अनादि से ही जीव के साथ निबद्ध है। पेज नंबर 14 वो समाधान का दूसरा पैरेग्राफ और नीचे से दूसरा पैरेग्राफ देखो, फिर से पढ़ते उसको। अनंतानंत परमाणुओं के समुदाय, समुदाय ने उसका जो ग्रुप हम वर्गणा वो कहते हैं, उसका समागम, ये इकट्ठे उसका स्कंद रूप हो गई, अभी उत्पन्न हुई इन आठ प्रकृतियों के द्वारा, ये आठ जो द्रव्य कर्म है उसके द्वारा एक एक जीव प्रदेश पर संबद्ध यानी उसके साथ बंधे हुए परमाणुओं के द्वारा, कितने अनंत परमाणुओं के द्वारा, यानी जीव के प्रदेश तो असंख्यात है और प्रत्येक प्रदेश पर ये 8 प्रदेश निरावरण है ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना। एक एक प्रदेश पर संबद्ध अनंत परमाणुओं के द्वारा अनादि स्वरूप से संबंध को प्राप्त अमूर्त भी यह जीव, यानी ये संबंध अनादि से है और जीव अमूर्त होने पर भी, वो तो संबंध से रहित कभी हुआ ही नहीं, अनेक परमाणु आते अनेक चले जाते परंतु ये बंध तो बना ही रहता है पुद्गल का, इसलिए उसको मूर्तत्व को प्राप्त होता है। वो सम्यक तो मार्गणा में तो जीव कांड में भी लिखा है कि जीव को रूपी और रूपी दो प्रकार में बांटा है, संसारी जीव को रूपी कहा है, सिद्धों को अरूपी कहा है, यही बात यहाँ बता रहे हैं। तो जीव मूर्तत्व को प्राप्त होता हुआ आविद्ध कुलाल चक्र के समान, अर्थात प्रयोग प्रेरित कुंभकार के चक्र के तुल्य, प्रयोग प्रेरित यानी जो घूमता हुआ चक्र, प्रयोग प्रेरित क्योंकि वो तो किसी निमित्त से जो उसका प्रयोग किया है उसको शुरू कर दिया, उसको घूम रहा है। द्रव्य परिवर्तन आदि 7 प्रकार के संसारों में संसरण या भ्रमण करता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, यानी यहाँ कुंभकार के निमित्त से ये घूमता रहता है, वैसे यहाँ कर्मों के निमित्त से ये जीव भी चारों गति में 84 लाख योनि में घूमता रहता है। ये लिखा ना, एक एक प्रदेश पर संबद्ध अनंत परमाणु, लोग पूछते ना कहाँ लिखा है सभी परमाणुओं में बंध है, 8 प्रदेश निरावरण नहीं है, यह लिखा है ना। वो चल अचल ऐसा जो बताते हैं, हाँ वो तो घूमने की अपेक्षा बताते हैं, और विग्रह गति में तो सारे ही चलायमान है, विग्रह गति में कहाँ अचल है। पर विग्रह गति में वो भी चलायमान है, लिखा है ना जीवकांड में। देखो संसार अवस्था यानी देहधारी अवस्था में बीच के वो तो उसको कहेंगे तो 8 है वो स्थिर कहो या वो घूमते नहीं ऐसा कहेंगे, और बाकी घूमते हैं। विग्रह गति में सभी चलायमान है, और सभी अचल कहाँ लिया है, लोकपुरण समुदाय में शायद समय योग जहाँ कहते हैं, सभी प्रदेशों पर योग समान होता है, समय योग कहते हैं उसको। आगे पढ़ते, मेधावी जीवों के अनुग्रहार्थ संग्रह नय का अवलंबन ले, मेधावी यानी बुद्धिमान, प्रकृति समुत्कीर्तन करके यानी उन्होंने वो मूल प्रकृतियों के नाम बताए, अब मंदबुद्धि जनों का अनुग्रह करने के लिए व्यवहार नय रूप पर्याय से परिणत आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं। ये आचार्यों को व्यवहार नय रूप पर्याय से परिणत कहा, यानी वो अभी तो उसके भेद करके बताएंगे, एक एक मूल प्रकृतियों के उत्तर प्रकृतियों का कथन करेंगे। 13 नंबर, नाना वर्णीयस्य कम्मस्य पंचपयडियो, ये सब विषय बहुत आसान है ना, हमारा तो कर्मकांड हुआ है तो ये तो मूल प्रकृति कौन सी है, उत्तर कौन सी है, क्या है, वे देखो ज्ञानावरणीय कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं, वे 5 प्रकृतियां इस प्रकार है। हाँ ऊपर है, ऊपर 14 नंबर ऊपर है, ये बोल्ड नहीं है ना, इसलिए गलत हुआ। ऊपर का 14 नंबर का सूत्र पढ़ना है। आभि निभोय नाना वर्णीयम, सुध नाना वर्णीयम, ओहि नाना वर्णीयम, मणपज्जव नाना वर्णीयम, केवल नाना वर्णीयम चेदी। वे 5 प्रकृतियां इस प्रकार है। आभि निबोधि ज्ञानावरणीय, इन्हें मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर्य ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। शंका, ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है, इस प्रकार का सूत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 5 प्रकृतियों के पृथक नाम निर्देश के द्वारा ही इस बात का ज्ञान हो जाता है। इनका कहना ऐसा है, 5 प्रकृतियां होती है, अलग से सूत्र क्यों बनाया? 5 नाम बताए तो 5 नक्की हो जाते हैं ना, कि इस बात का ज्ञान हो जाता है कि ज्ञानावरणीय प्रकृतियां, कर्म की प्रकृतियां 5 ही है उसका समाधान। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयावलंबी शिष्यों के अनुग्रह के लिए ज्ञानावरणीय कर्म की 5 प्रकृतियां होती है, इस प्रकार का सूत्र निर्माण किया गया है। यदि ये दोनों ही सूत्र एक नए के आश्रित होते तो उक्त प्रकार का यह दोष होता है, किंतु पहला सूत्र द्रव्यार्थिक नए शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है और पिछला सूत्र पर्यायार्थिक नए शिष्यों का अनुग्रह करने वाला है, इसलिए दोनों ही सूत्र सफल अर्थात सार्थक है। अभी ये जो अभिनिबोधिक शब्द कैसे तैयार हुआ उसकी बात बता रहे। अभिमुख, अभिमुख यानी इंद्रियों के सन्मुख हो जाते, अभिमुख यानी सन्मुख, और नियमित अर्थ, नियमित अर्थ यानी जो एक एक इंद्रिय का अपना विषय जो निश्चित है, जैसे कर्णेन्द्रिय का विषय जो शब्द ध्वनि, और घ्राणेन्द्रिय का विषय होगा जो सुगंध दुर्गंध गंध, अपने निश्चित विषय को जानती है। अभिमुख और नियमित अर्थ के, अर्थ यानी पदार्थ के अवबोध को यानी ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। स्थूल वर्तमान और अनंतरित अर्थात व्यवधान रहित अर्थों को अभिमुख कहते हैं। अर्थ यानी पदार्थ, ये इंद्रिया किसको जानते हैं तो स्थूल पदार्थों को जानेगी, और वो भी वर्तमान के पदार्थों को जानेगी। और अनअंतरित, अंतरित नहीं है, जैसे हम कहते हैं स्वर्ग नरक आदि दूर अंतर दूर है तो अंतरित होते, काल के द्वारा या क्षेत्र के द्वारा उसको अंतरित कहते हैं। तो कहते हैं व्यवधान रहित यानी उसमें कोई बाधा बीच में कोई, जिसको कहे ना मराठी में कहते हैं अड़थला जिसको कहें, क्योंकि कोई बीच में चीज है तो उसके पार उस वाली चीज हमको नहीं दिखाई देगी, उसको व्यवधान रहित अर्थों को अभिमुख कहते हैं। चक्षुर इंद्रिय में रूप नियमित है, यानी चक्षुर इंद्रिय का विषय तो रूप है, वो निश्चित है, उसके लिए वो रूप ही को जानेगी, अन्य को नहीं जानेंगे। श्रोत्र इंद्रिय में शब्द, इसको हम ध्वनि कहेंगे, आवाज। घ्राणेन्द्रिय में गंध, जिह्वेन्द्रिय में रस और स्पर्शनेन्द्रिय में स्पर्श, और नो इंद्रिय अर्थात मन में दृष्ट यानी देखा हुआ, श्रुत और अनुभूत पदार्थ नियमित है। अनुभूत यानी बाकी के इंद्रियों के लिए अनुभूत कह दिया उन्होंने, यानी पहले जानी हुई चीज जो है उसको मन के द्वारा हम फिर दोबारा जानते हैं। इस प्रकार के अभिमुख और नियमित पदार्थों में जो बोध होता है वह अभिनिबोध है, और अभिनिबोध ही अभिनिबोधी ज्ञान कहलाता है। जैसे हम कहते शरीर से शारीरिक ऐसा शब्द तैयार होता है, तो अभिनिबोध से अभिनिबोधिक। हाँ देखो, ये अभिनिबोध हुआ है वो बोध करना, बो पहली लाइन में भो लिखा है ना, वो बो होता है। अभिनिबोध और उससे शब्द हुआ अभिनिबोधिक। यहां पर ज्ञान यह विशेष्य पद है, क्योंकि वह सामान्य रूप है, यानी जिसका विशेषण बनाया जाता है, जैसे मति ज्ञान, तो ज्ञान ये सामान्य हुआ, मति उसका भेद है, तो उसको ये मति के बदले यहाँ अभिनिबोधिक कहा, अभिनिबोधिक ज्ञान, ये क्योंकि वो सामान्य रूप है। अभिनिबोधिक यह विशेषण पद है क्योंकि वह अन्य ज्ञानों से व्यवच्छेद करता है, यानी जुदा करता है, अन्य ज्ञानों से डिफरेंस बताने के लिए यहाँ अभिनिबोधिक शब्द आता है, वो उसका विज्ञान का विशेषण है। इसलिए दोनों पदों के देने पर भी पुनरुक्त दोष नहीं आता, क्योंकि अभिनिबोधिक में बोध का अर्थ ज्ञान होता है, और फिर दोबारा ज्ञान ये शब्द लगाया, तो ज्ञान ये सामान्य पद है और अभिनिबोध ये उसका विशेष विशेषण है। पूरा अभिनिबोधी कितना विशेषण हो गया, वह अभिनिबोधिक अभी हुआ, यहाँ अभी करना सेकंड पैराग्राफ में, वह अभिनिबोधिक ज्ञान अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा के भेद से चार प्रकार का है। ये मति ज्ञान के भेद हम देखते हैं ना, अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा, विषय और विषयी के, विषय ने वो ज्ञान, विषय और विषयी के योग्य देश में प्राप्त होने के अनंतर, योग्य देश में ने भी चक्षु इंद्रिय के लिए तो उसकी जो कुछ रेंज है उसमें, और बाकी इंद्रियों के लिए वो तो उसकी कांटेक्ट होकर जानते हैं, योग्य देश में प्राप्त होने के अनंतर आद्य ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। आद्य ग्रहण शुरुआत का जो ग्रहण है, ग्रहण यानी वो जानना, उसको अवग्रह कहते हैं।
विषय को ज्ञान किया ना, ज्ञान
विषयी,
विषयी ज्ञान,
ज्ञान ज्ञान है ना, इंद्रिया,
जैसे कोई भी पटेल कर सकते,
हाँ जैसे भी एक गंध को जानना है तो गंध ये विषय हुआ और घ्राण इंद्रिय वो विषयी हुआ। देखो बाहरी पदार्थ विषय है और इंद्रिया विषयी कहलाती है। अब मति ज्ञान में तो इंद्रियों को ही लेना, इंद्रिया मन वगैरह, इन दोनों की ज्ञान उत्पन्न करने के योग्य अवस्था का नाम संपात है। यानी विषय की भी अवस्था जो ज्ञान करने योग्य हो और इंद्रियों की भी अवस्था ज्ञान करने योग्य हो, उसको कहेंगे संपात। विषय और विषयी के संपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला ज्ञान अवग्रह कहलाता है, जिसको आद्य ग्रहण किया। वह अवग्रह भी दो प्रकार का है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। उनमें अप्राप्त अर्थात अस्पृष्ट अर्थ के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं। अस्पृष्ट ने नहीं स्पर्शा हुआ, नहीं स्पर्शा हुआ, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप को ग्रहण करना, ये चक्षु इंद्रिय और मन के द्वारा तो अप्राप्त अर्थ का ग्रहण होता है, उसको कहेंगे अर्थावग्रहण। और प्राप्त अर्थात स्पृष्ट अर्थ के ग्रहण को व्यंजनावग्रह कहते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करना, देखो इसके लिए भी नीचे कुछ लिखा है उन्होंने, देखो उसके व्यंजनावग्रह के अलग पद, व्यंजन ने यहाँ लिखा ना स्पष्ट अर्थ को, प्राप्त अर्थ को व्यंजनावग्रह कहते हैं। प्राप्त है ने वो इंद्रिय के कांटेक्ट में आया, उसको भी प्राप्त कहते हैं। दो पद्धति से उसका स्पष्टीकरण आता है शास्त्र में, और पंडित टोडरमल जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वहां वे कहते हैं कि तत्वार सूत्र में अलग अर्थ किया है और यहाँ पर अलग अर्थ किया, ऐसा क्यों, ये प्रश्न स्वयं पूछते हैं। वहां कहते पहले जो अव्यक्त ग्रहण होता है, ग्रहण तो हुआ परंतु अव्यक्त है, उसको व्यंजनानुग्रह का। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो हम जानते हैं वो डायरेक्ट व्यक्त ही होता है, यानी व्यंजन का अर्थ अव्यक्त कहा उन्होंने, यानी शुरुआत में प्राप्त होने पर भी प्राप्त तो होता है, प्राप्त यानी इंद्रियों के संसर्ग में संपर्क में आया है पदार्थ, परंतु शुरुआत में वो अव्यक्त होता है ग्रहण, और बाद में वही व्यक्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, चक्षु के द्वारा देख रहे कि यहाँ कुछ उबलता तेल का छींटा यहाँ गिर गया, हम देख रहे हैं, परंतु स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा उसको जानने में कुछ अवधि लगता है, कुछ सेकंड लगते हैं, बाद में वो हमें स्पर्श उसका स्पर्श भाषित होने लगता है। तो शुरुआत में तो कुछ ग्रहण तो हुआ परंतु वो अव्यक्त था। तो प्राप्त के दो अर्थ होते हैं, प्राप्त अर्थ को यहाँ व्यंजनावग्रह कहा, तो इंद्रियों के कांटेक्ट में आने स्पर्शे हुए को जानता है, ये एक अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ हुआ है शुरुआत में स्पर्श होने पर जानता, तो ये तो बात सही है, परंतु शुरुआत में वही अव्यक्त है और बाद में वो व्यक्त हो जाता है। अभी आते हैं पेज नंबर 17 पर। अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ के विशेष जानने की आकांक्षा यह है, अंदर और यानी जिज्ञासा हुई, अर्थात अवग्रह के द्वारा जो पदार्थ ग्रहण किया गया है उसकी विशेष जिज्ञासा को यह कहते हैं। जैसे किसी पुरुष को देखकर क्या यह भव्य है अथवा क्या अभव्य है, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करने को यह ज्ञान कहते हैं। परंतु यह संशय ज्ञान नहीं है, यह है कि वो है ऐसा नहीं है, ये जिज्ञासा हुई कि क्या हो सकता है उसमें से। हाँ देखो आगे लिखा है, यह ज्ञान संदेह रूप नहीं है, यानी संशय ज्ञान ये है कि वो है ऐसा नहीं, आत्मा है कि नहीं है, वो बातें नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश पाया जाता है, यानी यह कैसा ज्ञान है, संदेह का विनाश करने वाला ज्ञान है, वो इटसेल्फ संशय नहीं है। संदेह से उपरीतन और अवाय ज्ञान से अधस्तन तथा अंतराल में प्रवृत्त होने वाली विचार बुद्धि का नाम इहा है, यानी संदेह से पार है वो, ऐसा संशय नहीं कि ये है कि वो है, वो तो विशेष उसको स्पष्ट करने की जिज्ञासा है, वहां उस तरफ उसका ज्ञान चल रहा है, परंतु अवाय ज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे जो है बीच वाला विचार बुद्धि उसको कहेंगे इहा। शंका, विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान है, इस शास्त्र के अनुसार वचन के अनुसार इहा वितर्क रूप होने से श्रुत ज्ञान है। ये विशेष रूप से तर्क करना श्रुत ज्ञान, ये यहाँ वितर्क, उसको वितर्क कहते हैं, कल बात आई थी ना शाम को, पृथक्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, वो वितर्क यानी श्रुत का जो कुछ शब्द होता है उसका कोई विचार चलता है उसको वितर्क कहा जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि अवग्रह से प्रतिगृहित यानी जाने हुए अर्थ के आलंबन करने वाले वितर को इहा कहते हैं, और भिन्न अर्थ का आलंबन करने वाला वितर्क श्रुत ज्ञान है, ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ, क्या अवग्रह से जिस पदार्थ को जाना है और उसी पदार्थ के और उसी पदार्थ का विशेष निर्णय करना है, अन्य पदार्थ का नहीं, अवग्रह से जिस पदार्थ से को जाना है उसी का विशेष निर्णय के प्रति जो बुद्धि चलती है, बुद्धि का चला है अभी, उसको कहेंगे यहाँ पर इहा। और श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या है,
विशेष
मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानना, अन्य पदार्थ में भी आत्मा शब्द सुना, ये तो शब्द है, और उसके द्वारा आत्मा पदार्थ के बारे में जीव विचार करता है, हाँ तो उसको हम कहेंगे श्रुत ज्ञान। शक्कर शब्द सुना, ये तो शब्द हुआ, कर्णेन्द्रिय के द्वारा हमने शक्कर सुना, और ये हमारे किचन में शक्कर रखी है, उसका उस संबंध हमारा विचार चला, तो उसको हम कहेंगे श्रुत ज्ञान। और हमारे सामने वो पीसी हुई शक्कर रखी है तो हम गौर से देख रहे उसको, अरे नमक है कि शक्कर है, क्या है, उस संबंध हमारा जानने ही रूप। देखो फिर से पढ़ते इसको। अवग्रह से प्रतिगृहित अर्थ के अवलंबन करने वाले वितर्क को यहाँ कहते हैं, यानी वही पदार्थ है। और भिन्न अर्थ का अवलंबन करने वाला, यानी दूसरे पदार्थ का, यानी एक का ज्ञान हुआ उसके द्वारा दूसरे पदार्थ का अवलंबन करने वाला वितर्क, विशेष रूप से तर्क, श्रुत ज्ञान है, ऐसा अर्थ स्वीकार किया गया है। अब कहते इहा ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना अवाय है, यानी यहाँ ज्ञान से तो जाना है, जानते ही है, और यहाँ के बाद निर्णय तक पक्का हो जाता है, उसको कहेंगे अवाय।
मिथ्यात्व में हम जो संशय, मिथ्यात्व में हम लोग जो संशय ज्ञान देखते हैं वो श्रुत ज्ञान का भेद है कि श्रुत ज्ञान में वो संशयात्मक विचार चले गए कि
श्रुत ज्ञान ये सम्यक श्रुत ज्ञान होता है, उसमें कोई संशय नहीं होता। संशय नाम का भेद है वो अज्ञान का है, मिथ्या ज्ञान का है, समय ज्ञान का नहीं है। आप ही ने बोला ना मिथ्या तो नहीं होता है। यहाँ ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना अवाय है। पहले यह ज्ञान से क्या यह भव्य है अथवा अभव्य है, इस प्रकार जो संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव है, सो यह अभव्य नहीं है, भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न हुए विश्वस्त ज्ञान का नाम अवाय है। अठारह पृष्ठ पर आते हैं। शंका, लिंग से उत्पन्न होने के कारण अवाय श्रुत ज्ञान है, ये समझ में है? लिंग के द्वारा उत्पन्न ऐसा क्यों कहा, ये किसके भेद है? दूसरा कौन सा भेद है? एक होता है लिंगज, एक होता है शब्दज। इसलिए यहाँ पूछते हैं लिंग से उत्पन्न होने के कारण अवाय भी श्रुत ज्ञान है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ से पृथकभूत अर्थ का आलंबन करने वाली निर्णय रूप लिंग जनित बुद्धि को श्रुत ज्ञान पना माना गया है। यानी हमने तो शब्द से सुना अर्थ जाना वो बात अलग, और उसका कोई चिन्ह देखकर हमने अन्य पदार्थ का निश्चय किया
वो
तो उसको लिंगज कहते हैं। ये श्रुत ज्ञान में इम्पोर्टेंस है, एक पदार्थ यानी मति ज्ञान के द्वारा जिसको जाना है उसके द्वारा अन्य पदार्थ का निर्णय करना, ये बात इसमें महत्व की होती है। किंतु अवाय ज्ञान अवग्रह से गृहित पदार्थ को ही विषय करता है और इहा ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होता है, इसलिए वह श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता। और श्रुत ज्ञान में हमने देखा था कि अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ, अवग्रह से पदार्थ को जाना और उसके बाद वो श्रुत ज्ञान हुआ। शंका, अवग्रह और अवाय इन दोनों ज्ञानों के निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता क्यों नहीं है? समाधान, निर्णयत्व के संबंध में कोई भेद न होने से एकता भले ही रही आवे, किंतु विषय और विषयी के सन्निपात के अनंतर उत्पन्न होने वाला प्रथम ज्ञान विशेष अवग्रह है और यहाँ के अनंतर काल में उत्पन्न होने वाले संदेह के अभाव रूप अवाय ज्ञान होता है। इसलिए अवग्रह और अवाय इन दोनों ज्ञानों में एकता नहीं है। अब अवाय ज्ञान से निर्णय किए गए पदार्थ का, अवाय ने वो तो हमने नक्की कर दिया पदार्थ कौन सा है, कालांतर में विस्मरण न होना धारणा है। जिस ज्ञान से कालांतर अर्थात आगामी काल में भी अविस्मरण का कारणभूत संस्कार अविस्मरण ने स्मृति मेमोरी में ला सकते हैं, उसका विस्मरण नहीं हुआ है उसको अविस्मरण कहेंगे। क्या कहते हैं, जिस ज्ञान से यानी धारणा से कालांतर अर्थात आगामी काल में भी अविस्मरण का कारणभूत संस्कार जीव में उत्पन्न होता है उस ज्ञान का नाम धारणा है। इसका अर्थ क्या है, धारणा ये संस्कार का कारण है, यानी जो ज्ञान धारणा तक पहुंचा है वही संस्कार रूप से चल सकता है, परंतु वो संस्कार को भी धारणा कहने में आ जाता है। हम कहते हैं हमारी धारणा में है। वो संस्कार का कारणभूत ज्ञान है। ये कहते हैं ना, अभी संस्कार तो डालो अगले भव में काम आएगा। वो संस्कार क्या होता है, बच्चों पर संस्कार डालने, वो कल्चर कैसा करना, उसकी बात नहीं है। वो संस्कार जो हम लौकिक में कहते हैं वो बात अलग है। हम कहते हैं ना बच्चों को अच्छी
शिक्षा
देनी चाहिए, उनके संस्कार अच्छे होने चाहिए, वो बात अलग है। यहाँ जो हम संस्कार कहते हैं वो संस्कार आगे के भव में काम आएंगे। वो कौन से संस्कार, कि जो तत्व ज्ञान जो अभी तक धारणा तक पहुंचा हुआ है और अभी आत्मानुभव नहीं भी हुआ हो, तो वो धारणा की बात आगे के भव में वो उपयोग में ला सकते हैं। इसे नारकी में भी होती है ना बात, अरे हमने तो ऐसा पूर्व भव में सुना था, हमने गौर नहीं किया, अभी उस पर विचार चलता है। इन्हें संस्कार जो उत्पन्न होता है उस ज्ञान का नाम धारणा है। अवग्रह आदि चारों ही ज्ञानों की सर्वत्र क्रम से उत्पन्न नहीं होती, चारों ही ज्ञानों की सर्वत्र क्रम से उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि उस प्रकार की व्यवस्था पाई नहीं जाती है। इसलिए कहीं तो केवल अवग्रह ज्ञान ही होता है, यानी अवग्रह होकर चला गया अवग्रह होता है, कहीं अवग्रह और इहा ये दो ही ज्ञान होते हैं, यानी उस संबंध में अधिक जानने की जिज्ञासा हुई फिर भी वो छूट गई, अन्यत्र कहीं उपयोग चला गया। कहीं पर अवग्रह इहा और अवाय ये तीनों भी ज्ञान होते हैं, और कहीं पर अवग्रह इहा अवाय और धारणा ये चारों ही ज्ञान होते हैं। पर जहाँ धारणा हो रही है वो तो क्रम पूर्वक ही होगा, पहले अवग्रह होकर फिर यहाँ फिर अवाय और फिर धारणा होगी। उनमें एक एक यानी एक एक जो प्रकार देखा, अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा, ये इसमें से ये जो चार प्रकार है उसमें एक एक के साथ अभी क्या लेना है, यहाँ तो विषय हर एक के साथ, अवग्रह के साथ यहाँ अवाय धारणा हर एक के साथ 12 प्रकार के विषय बताएंगे। तो देखो बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त और ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी अर्थात अभी बहु लिखा तो उसके एक विध कॉमा लगा लो, अक्षिप्र निश्रुत उक्त और अध्रुव इनके भेद से 12 प्रकार का है। यानी जो एक एक जो ज्ञान बताया है अवग्रह इहा अवाय धारणा वो एक एक ज्ञान 12 प्रकार का बताया है। उनमें बहुत वस्तुओं का एक साथ ग्रहण करना बहु अवग्रह है, इस प्रकार का यह बहु अवग्रह अप्रसिद्ध भी नहीं है, नहीं प्रसिद्ध है, क्योंकि योग्य देश में स्थित पांचों अंगुलियों का एक साथ उपलम्भ पाया जाता है। एक ही वस्तु के उपलम्भ को एक अवग्रह कहते हैं। बहु अवग्रह ने अनेक पदार्थों को हम पांचों उंगलियों को हमने एक साथ जाना, तो ये बहु अवग्रह हुआ। और एक ही चीज को जाना तो एक अवग्रह हुआ। शंका, अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाए जाने से एक अवग्रह नहीं होता है, नहीं तो एक ही भी वस्तु वो अनंत धर्मात्मक है, उसको एक अवग्रह क्यों कह रहे हैं? यदि होता तो एक धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि ज्ञान एक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण करने वाला प्रमाण पाया जाता है। ज्ञान प्रमाण है, और एक कहने से एक धर्म वाली वस्तु, उसने वस्तु को एक कह दिया, एक धर्म वाली को एक कहते हैं, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि एक वस्तु का ग्रहण करने वाला ज्ञान एक अवग्रह कहलाता है, तथा विधि और प्रतिषेध धर्मों के वस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक अवग्रह हो सके। यानी एक एक धर्म को एक एक अवग्रह होता ऐसा नहीं है, किंतु विधि और प्रतिषेध धर्मों के समुदायात्मक एक वस्तु होती है, उस प्रकार की वस्तु के उपलम्भ को एक अवग्रह कहते हैं। यानी अनंत धर्मात्मक एक वस्तु है। विधि और प्रतिषेध यानी हम अस्ति नास्ति कहते हैं, नित्य अनित्य कहते हैं, तो एक एक धर्म को मुख्यता से कहते हैं, तो कहते कि वो बात अलग है, परंतु सबकी मिलकर वस्तु तो एक है, और उस एक वस्तु को ग्रहण करते हैं वो एक अवग्रह कहते हैं। अनेक वस्तु विषय ज्ञान को अनेक अवग्रह कहते हैं, किंतु प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मों का विषय करने वाला होता है, क्योंकि विधि और प्रतिषेध इन दोनों में से किसी एक ही धर्म का अनुपलम्ब है, अर्थात इन दोनों में से एक को छोड़कर दूसरा पाया नहीं जाता। दोनों ही प्रधान अप्रधान रूप से साथ साथ पाए जाते हैं। ये सभी जो धर्म है वो एक साथ ही होते हैं, नित्य भी और अत्य भी, अस्य भी और नास्ति भी, तो दोनों को ही विषय हो जाता है एक साथ। एक ही विषय को एक को मुख्य कर सकते हैं, परंतु तभी दूसरा जो है धर्म वो ज्ञान का विषय है, क्योंकि प्रमाण से जानी हुई वस्तु ये कंडीशन है, उसके एक धर्म को विषय करने वाला वो नहीं होता है। अभी बहु और एक की बात हो गई, अब विधेय ने प्रकार, बहुत प्रकार के अश्व हस्ती गो और महिष आदि पदार्थों का ग्रहण करना बहुविध अवग्रह है, और एक प्रकार के पदार्थ का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। यानी एट ए टाइम हाथी घोड़े गाय वगैरह सब बहुत सारे वहाँ प्राणियों का समूह है, वो बहुत प्रकार हुए ना प्राणियों के, उनको हमने एक साथ ग्रहण किया, और एक ही जाति के अनेक गाय होगी तो उसको एक विध कहेंगे। शंकाकार पूछता है एक और एक विध में क्या भेद है? उसका समाधान, एक व्यक्ति रूप पदार्थ का ग्रहण करना एक अवग्रह है, यानी एक सिंगल एंटिटी चाहिए वो, और एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थों का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। ये तो हर एक में लगा था, अनेक धातु है या एक ही धातु है, वो एक प्रकार हुआ उसमें से। आशु अर्थात शीघ्रता पूर्वक वस्तु को ग्रहण करना क्षिप्र अवग्रह है, और शनै शनै ग्रहण करना अक्षिप्र अवग्रह है। शनै शनै नहीं स्लोली, अक्षिप्र ने वो जो स्पीड जो होती है। अभिमुख अर्थ का ग्रहण करना मिश्रित अवग्रह है, यानी खुला हुआ है वो, और अनभिमुख अर्थ का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह है, अथवा उपमान उपमेय भाव के द्वारा ग्रहण करना मिश्रुत अवग्रह है। यानी उपमा जिसको दे जाती है उसको कहेंगे उपमा, जिसको उपमा देना है वो है उपमान और उपमेय।
इसके
नहीं, उपमान है नहीं, जिसकी उपमा दी जाती है, उपमेय यानी जिसको उपमा दी जाती है। जैसे कमल दल नयना, अर्थात स्त्री के नयन कमल पत्र के समान है। उपमान उपमेय भाव के बिना ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह है। नियमित गुण विशिष्ट अर्थ का ग्रहण करना उक्त अवग्रह है। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा धवल पदार्थ का ग्रहण करना और घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंध द्रव्य का ग्रहण करना इत्यादि। अनियमित गुण विशिष्ट द्रव्य का ग्रहण करना अनुक्त अवग्रह है। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा गुड़ आदि के रस का ग्रहण करना और घ्राण इंद्रिय के द्वारा दही आदि के रस का ग्रहण करना, यह अनुक्त अवग्रह अनिश्रुत अवग्रह के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि एक वस्तु के ग्रहण काल में ही उससे पृथकभूत वस्तु का उपरिम भाग के ग्रहण काल में ही परभाग का और अंगुली के ग्रहण काल में ही देवदत्त का ग्रहण करना अनिश्रुत अवग्रह माना गया है। देखो निश्रुत है ने, वो तो जैसे हाथी अंदर बैठा है सरोवर के और उसकी एक सूंड दिख रही है, बाकी तो छिपा हुआ है, उसको जानना वो निश्रुत हो अनिश्रुत है, अनभिमुख वो अनिश्रुत कह रहे हैं। निश्रुत है नहीं खुला, और यहाँ जो बता रहे हैं ना अनुक्त में
नहीं खुला हुआ।
अनुक्त वो बात अलग है, पदार्थ तो पूरा है परंतु उसके बारे में, यानी जो हम किसको जान रहे हैं, रस के द्वारा उसके अन्य का निर्णय करना ये हो जाता है। यहाँ बताया था ना, यानी गुड़ को देखकर वो मीठापन का ज्ञान होता है, वो यहाँ लेना अनिश्रुत। या घ्राण इंद्रिय के द्वारा दही आदि के रस का ग्रहण करना, उसका स्मेल लेके उसके टेस्ट के बारे में हमने जान दिया, जान लेना था। पेज नंबर 21, नित्यता से अर्थात निरंतर रूप से ग्रहण करना ध्रुव अवग्रह है और उससे विपरीत ग्रहण करना अध्रुव अवग्रह है। तो हमने ऐसे 12 भेद देखे, किसके किसके देखे, अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा के देखे। इस प्रकार यहाँ आदि शेष ज्ञानों के भी 12 भेद निरूपण करना चाहिए। अवग्रह पर बताया, ये सभी हर एक पर बताना। चक्षुर इंद्रिय और नौ इंद्रिय अर्थात मन के अभिनिबोधि ज्ञान संबंधी 48 विकल्प होते, वो 48 शब्द बाद में चाहिए, नहीं तो 48 अभिनिबोधि ज्ञान संबंधी विकल्प होते, परंतु 48 ये विशेषण विकल्प के लिए लगाया है। फिर से दोबारा, चक्षुर इंद्रिय और मन, नौ इंद्रिय ने मन, उसके लिए अभिनिबोधि ज्ञान संबंधी कितने विकल्प होते, तो 48 होते हैं। क्योंकि अभी हम स्पर्शन इंद्रिय के देखेंगे कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 विषय है और 12 विषय तो अवग्रह यहाँ हमारे धारणा बाटो 48, चक्षु और मन के 48 बताए, बाकी के कितने होंगे?
चक्षु और मन के 48,
फिर से यहाँ अलग पद्धति से उसके विभाजन कर रहे हैं। अभी हमने देखा अवग्रह यहाँ अवाय और धारणा,
उसके 12 भेद
और हर एक में 12 होते हैं। अभी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा क्या होता है, कौन सा अवग्रह होता है,
अर्थावग्रह।
तो अर्थावग्रह यह अवाय धारणा, चार और चार के बारह बारह कितने हुए
48
हुए। अब मेरा प्रश्न है स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कितने होंगे?
वहाँ पे भी 12 व्यंजन अवग्रह होता है,
व्यंजन अवग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर यहाँ अवय और धारणा, पांच हो गए,
60 हो जाएंगे।
वो 60 हो गए उसके पहले, उसके दो दो अवग्रह लेना, पहले व्यंजन अवग्रह बाद में अर्थावग्रह। पहला अवक्त अव्यक्त ग्रहण हुआ था
तो पीछे
वो व्यक्त हो जाता है। फिर से देखो ये पैराग्राफ फिर पढ़ती हूँ। इस प्रकार यहाँ आदि शेष ज्ञानों के भी 12 भेद निरूपण करना चाहिए। चक्षुर इंद्रिय और 9 इंद्रिय अर्थात मन के आभिनिबोधिक ज्ञान संबंधी, ये आगे पीछे करना शब्द, 48 विकल्प होते हैं, क्योंकि चक्षु और मन इन दोनों के व्यंजनावग्रह का अभाव है। ये ख्याल में आई बात, ये डायरेक्ट उनका अर्थावग्रह से शुरू हो जाता है। शेष चारों इंद्रियों के मति ज्ञान संबंधी 60 भेद होते हैं, ये 60 शब्द बाद में पढ़ना, क्योंकि उनमें अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह इन दोनों का भी होना संभव है। यानी चक्षु और मन के द्वारा क्या होता है, अर्थावग्रह यह अवाय धारणा इंटू 12 48 हुए। अन्य चार इंद्रियों के व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर यहाँ, फिर अवाय, फिर धारणा इंटू 12, ये 60 हो गए। और चार इंद्रिय है साई चक 24, 240 ये हो जाएंगे। चक्षु और मन 48 96 हो जाएंगे। टोटल कितने होते हैं 336। अलग पद्धति से होने को, हम पहले क्या करते हैं, पांच इंद्रिय और मन पहले 6 ले लेते हैं, 6 में 6 के अवग्रह यह वाय धारणा 24 हो गए, सही चुक 24 और 24 में
12
24 इंटू 12 44 दोनी 288 और इन चार इंद्रियों के उसमें और मिला देना, कौन से चार इंद्रियों के द्वारा व्यंजनावग्रह एक्स्ट्रा है और व्यंजनावग्रह के 12 करो, तो व्यंजनावग्रह के 12 करो, यानी उसमें 288 इंटू 48 और मिला देना, तो भी 336 हो जाएंगे। यहाँ अलग पद्धति से काउंटिंग किया है। इस प्रकार के ज्ञान का जो आवरण करता है उसे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। ये बात अपने ज्ञानावरण से निकले, तो ज्ञानावरण समझाने के लिए ज्ञान के भेदों को बताया, तो मति ज्ञान के 336 भेद इस प्रकार से बताए, और इसको आवरण करने वाला वो मति ज्ञानावरण कहो या आभिनिबोधिक ज्ञानावरण कह दिया। हाँ, 60 के 4 4 यानी 240 और 48 के 2 यानी 96, ये डायरेक्ट 336 भेद आ जाते हैं। पहले व्यंजन अवग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर यह अवय धारणा। शुद्ध ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को शुद्ध ज्ञानावरणीय कहते हैं। उनमें इंद्रियों से ग्रहण किए गए पदार्थ से उससे पृथक भूत पदार्थ का ग्रहण करना, ये महत्व की बात है। अन्य पदार्थ का ग्रहण होता है, शुद्ध ज्ञान है, जैसे शब्द से घट आदि पदार्थों का जानना, यानी घट ये शब्द सुनकर वो घट पदार्थ को जाना, अथवा धूम से अग्नि का जानना, यानी ये शुद्ध कहने के केवल वो सुनने से ही होता है कि नहीं, देखने से भी होता है, वह शुद्ध ज्ञान 20 प्रकार का है। जैसे ये सब 20 के नाम है, पर्याय, पर्याय समास, ये पर्याय नाम का एक ही भेद है, और उसके बाद वो आगे वाला जो भेद है अक्षर नाम का। जब तक वो पर्याय और अक्षर के बीच में जितने ज्ञानों के भेद है, वो सबको मिलकर एक नाम दिया पर्याय समास। पर ये पर्याय समास ज्ञान के कितने भेद हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण, जिसमें असंख्यात लोक बार षट्स्थान बुद्धि के स्थान है, यानी एक बार बुद्धि हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी, यानी अनंत गुणी भी असंख्यात लोक बार हो जाएगी, तब जाके अंत में अक्षर नाम का ज्ञान मिलेगा। असंख्यात लोक प्रमाण, पर्याय समास के भेद असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं। देखो ये पर्याय नाम का जो ज्ञान है, जो सबसे मिनिमम ज्ञान का भेद है, जो हम कहते हैं सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त के जो जघन्य ज्ञान है, उसका नाम है पर्याय ज्ञान। अभी ये ज्ञान है, उसमें कोई अलग अलग ज्ञानों के जो भेद है, उसमें भेद एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ने वाले कोई भेद नहीं होंगे। तो उसे जितने अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात बार हो जाते हैं, फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि वगैरह, वो सब समझना। तो इसे षट्स्थान वृद्धि होती है, यानी एक बार अनंत गुणा वृद्धि हो जाती है, तो षट्स्थान एक कंप्लीट हुआ। फिर दूसरी बार ऐसे षट्स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण उसमें भी स्थान हो जाते हैं, तो आगे आगे वाले जो स्थान होते हैं, तो ऐसे अनंत गुण वृद्धि के भी असंख्यात लोक बार हो जाते स्थान, तब जाके अक्षर नाम का ज्ञान प्रकट होता है। यानी वो एक अक्षर संबंधी ज्ञान, ज्ञान की बात है यहाँ। तो ये 20 प्रकार जो बताए, जहां जहां समास है, समास का अर्थ जो बीच वाले अनेक भेद होते हैं उसके अंदर, जैसे पर्याय और पर्याय समास, अक्षर और अक्षर समास, पद। तो अक्षर समास के कितने भेद हो गए अश्विन भाई?
असंख्यात लोक प्रमाण। अक्षर समास के नहीं, संख्या की होगी।
देखो पद में अक्षर कितने होते हैं?
संख्या
कितने? संख्या
कितना करोड़?
1634,83,07,888। इतने अक्षरों का एक पद है, उसमें एक कम करो, 888 के बदले 887 करो,
कितने?
वो अक्षर समास का अंतिम भेद होगा। अक्षर नाम का एक अक्षर, दो अक्षर से लेकर वो एक कम
16 करोड़
पद में, इतने सारे अक्षर समास के भेद होगी जो संख्या की हो सकते हैं। ख्याल में आई ना कैसे संख्या था? अक्षर और अक्षर समास, फिर पद और पद समास, संघात, यानी संख्यात हजार पदों का एक संघात होता है, तो उसके बीच में वो एक पद से एक अक्षर ज्यादा, फिर दो पद, चार पद, दस पद, हजारों पद, तो ये सारे पद समास कहेंगे। फिर संघात, संघात समास, फिर प्रतिपत्ति, उसके बाद प्रतिपत्ति समास, फिर अनुयोग, फिर अनुयोग समास, फिर प्रावृत प्रावृत, फिर प्रावृत प्रावृत समास, फिर प्रावृत, फिर प्रावृत समास, फिर वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। पूर्व और पूर्व समास से क्या समझना? पूर्व के बाद ऐसा कौन सा है कि जिसको पूर्व समास कहेंगे? नहीं, प्रकीर्णक तो अंग बाह्य हो गए। देखो ये अग्रायणी पूर्व उत्पाद, अग्रायणी पूर्व वगैरह है ना, 14 पूर्व है, तो पहला पूर्व पूर्ण हो गया, तो उसमें प्लीज एक अक्षर ज्यादा, फिर एक पद ज्यादा, एक संघा ज्यादा, सब बढ़ाते चले जाओ, तब जाके दूसरी दूसरा पूर्व पूर्ण होगा, फिर तीसरा पूर्व, वे अंतिम तक जाएंगे वो सारे पूर्व समास, एक पूर्व से दूसरे पूर्व तक वो सब पूर्व समास, फिर दूसरा पूर्व संबंधी ज्ञान, तीसरा पूर्व, क्रम से एक एक पूर्व का ज्ञान होगा, सभी पूर्वों का समाप्त हो जाएगा, तो वो शुद्ध केवल ज्ञान कहेंगे, उसके बीच वाले सारे पूर्व समास वाले कहेंगे, और अंतिम 14 पूर्व का पूर्ण ज्ञान हुआ तो कहेंगे 14 पूर्वी, ये 10 पूर्वी, 14 पूर्वी, ऐसे भेद आते हैं ना, वो क्रम से सभी पूर्वों का ज्ञान होते होते वहां तक पहुंच गए, तो बीच वाले सारे पूर्व समास कहलाएंगे। हाँ केवल ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान का अंतिम भेद शुद्ध केवल ज्ञान। हाँ देखो यहाँ सभी बताए। हाँ बोलो। हाँ 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 बिल्कुल। देखो अभी इसका विशेष वर्णन करेंगे, मैंने अपनी भाषा में बताया, अब यहाँ बताएंगे पूरा ही। हो कह दिया पेज 21 पर, ये सब ज्ञान के भेद हैं, श्रुति ज्ञान के भेद यहाँ से शुरू हो जाएगी, ये सारे विस्तार से आने वाली बात है। देखो नीचे का, नीचे की लाइन, लास्ट लाइन, क्षरण अर्थात विनाश के अभाव होने से केवल ज्ञान अक्षर कहलाता है, उसको भी अक्षर कहेंगे। उसका अनंतवा भाग पर्याय नाम का मति ज्ञान है। ये अक्षर का अनंतवा भाग कहते वो केवल ज्ञान का भी कह सकते, या अक्षर नाम का जो श्रुत ज्ञान है उसका भी वो अनंतवा ही भाग है। वह पर्याय नामक मति ज्ञान केवल ज्ञान, ये मति ज्ञान का भी नाम पर्याय ही कहते हैं और श्रुति ज्ञान का भी नाम पर्याय ज्ञान ही। पर्याय नाम का मति ज्ञान केवल ज्ञान के समान निरावरण और अविनाशी है। इस सूक्ष्म निगोद लब्धि अक्षर से, यानी वो भी अक्षर है ना, उसका भी कभी विनाश नहीं, वो हमेशा निरावरण पाया जाता है। सूक्ष्म निगोद लब्धि अक्षर से जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी कार्य में कारण के उपचार से पर्याय कहलाता है। यानी एक्चुअली पर्याय नामक मति ज्ञान है और उससे जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको भी पर्याय कहते हैं, उस शुद्ध ज्ञान का भी नाम पर्याय। इस पर्याय श्रुत ज्ञान से जो अनंत वे भाग से अधिक श्रुत ज्ञान होता है वह पर्याय समास कहलाता है, क्योंकि वो जो सबसे पहले पर्याय के बाद वाला जो पहला जो ज्ञान का भेद है वह अनंत वे भाग अधिक होगा। अविभाग प्रतिच्छेदों को अनंत के भाग देना और उसको उसी में मिला देना वो उसका दूसरा भेद होगा, पर्याय के बाद वाला भेद, तो उसको वहां से पर्याय समास कहेंगे हम। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन छहों वृद्धियों के समुदायात्मक यह एक क्षण वृद्धि होती है, परंतु ये एक बार नहीं होती, वो तो उसके जो असंख्यात बार होके फिर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर अनंत भाग वृद्धि असंख्यात बार होकर फिर वो एक बार हो जाएगी, वो सारा ही झमेला रिपीट करना पड़ता है। ये हमने टेबल देखा था जीव कांड में। हाँ तो एक षड वृद्धि हुई, इस प्रकार की असंख्यात लोक प्रमाण षड वृद्धियां ऊपर जाकर, यानी कितने बार ऐसी षड वृद्धि होगी, यानी जो षड वृद्धि में अनंत गुण वृद्धि एक ही बार होती है लास्ट में,
असंख्यात लोक,
फिर वो सारे षड वृद्धियां चालू होती, फिर अंतिम जो अनंत गुण वृद्धि हुई फिर और एक षड वृद्धि चालू होगी। क्या अन्य वृद्धियां तो बहुत बार होती है ना, तो इस प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण षड वृद्धियां ऊपर जाकर पर्याय समास नामक श्रुत ज्ञान का अंतिम विकल्प होता है। उस अंतिम विकल्प को अनंत रूपों से गुणित करने पर अक्षर नामक श्रुत ज्ञान होता है। अंतिम जो अनंत गुण वृद्धि है तो पर्याय समास के बाद वाले अक्षर में ले लेना। शंका, उक्त प्रकार के इस श्रुत ज्ञान की अक्षर ऐसी संज्ञा कैसे हुई? समाधान, क्योंकि द्रव्य श्रुत प्रतिबद्ध एक अक्षर से उत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति की उपचार से अक्षर ऐसी संज्ञा है। उपचार से उसको भी, उस ज्ञान को भी अक्षर कहा, वो ज्ञान कौन सा, वो केवल ज्ञान को भी अक्षर कहते हैं, वो बात अलग है। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो द्रव्य श्रुत में जो अक्षर प्रतिबद्ध होते हैं उसमें एक अक्षर संबंधी जो ज्ञान होना,
वो भी
अक्षर तो वो अक्षर को अक्षर कह रहे हैं, जो लिपि है हमारी, उस ज्ञान को भी उपचार से अक्षर कहते हैं। एक है अक्षर यानी वो अक्षर लिपिबद्ध अक्षर, और ये ज्ञान, तो ज्ञान को भी अक्षर कह देते हैं। जैसे ए बी सी डी में ए का ज्ञान हुआ, ए का ज्ञान इतना ही ज्ञान की वो लेवल है उसकी, उस ज्ञान को भी अक्षर कह देते हैं, ये कहना है, इसलिए उसको उपचार कहा। अक्षर यानी वो श्रुत ज्ञान के जो अक्षरों की बात है उसको, वो साक्षात अक्षर है और उस संबंधी ज्ञान है, वो अक्षर ज्ञान कहेंगे। एक अक्षर संबंधी, दो अक्षर संबंधी, पद ज्ञान का अर्थ क्या है, 1634 करोड़ उतने अक्षरों संबंधी ज्ञान होना, वो कहेंगे पद ज्ञान। देखो इस अक्षर श्रुत ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की ही वृद्धि होती है, अन्य वृद्धियां नहीं होती। ब्रह्मा अन्य वृद्धियां नहीं होती का अर्थ क्या है,
ये संस्थान वृद्धि नहीं होती।
हाँ वो अनंत भाग वृद्धि वगैरह जो है ना वो वाली नहीं होती,
एक एक अक्षर,
क्योंकि एक एक अक्षरों में हम गिन रहे हैं, अन्य वृद्धियां नहीं होती। इस प्रकार आचार्य परंपरागत उपदेश पाया जाता है। हाँ षट्स्थान वृद्धि वो नहीं होगी, परंतु कितने आचार्य उसको भी स्वीकार करते, वहां पर कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि अक्षर श्रुत ज्ञान भी छह प्रकार की वृद्धि से बढ़ता है, किंतु उनका यह कथन घटित नहीं होता, क्योंकि समस्त श्रुत ज्ञान के संख्यात विभाग रूप अक्षर ज्ञान से ऊपर छह प्रकार की वृद्धियों का होना संभव नहीं है। जहाँ संख्या की संख्या अक्षरों की, उसमें वो कैसे वृद्धि कैसे नक्की करेंगे।
सभी पंचेंद्रियों में अक्षर ज्ञान होता है ना,
क्या
सभी पंचेंद्रिय को
हाँ
अक्षर ज्ञान होता है ना?
हाँ होने दो ना, ये हो गया ना अभी आगे, पेज नंबर 23। वो अक्षरों का ज्ञान, वो अक्षर ज्ञान, वो बात अलग है, और बाकी तो उनके तो उसको शब्दात्मक नहीं, परंतु जब ये कोई पंचेंद्रिय कुत्ता है उसको लाल रंग हरे रंग से जुदा ये ज्ञान है कि नहीं, उसको
नहीं, मेरा क्वेश्चन
अभी उसको बात, उसकी बात छोड़ो दो, असंगी है अभी, कोई असंगी भी जीव है
हाँ, उसको भी ज्ञान तो,
उनको भी डिफरेंस तो पता है ना। अभी एक इंद्रिय जीवों को भी प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हाँ, कुछ ज्ञान तो डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
नहीं, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि अक्षर ज्ञान एक इंद्रिय में भी हो सकता है,
एक इंद्रिय में अक्षर ज्ञान कहाँ बताया,
पर्याय
तो निबोध को पर्याय समास वाले भेद है सारे,
वो सभी
पर्याय समास वाले हो,
नहीं अक्षर ज्ञान कहाँ से शुरू
वो तो निरक्षरी होता है ना, अनक्षरी निरक्षरी कहते, निरक्षर ध्वनियों का ज्ञान है उनको, यहाँ तो केवल श्रुत ज्ञान की तरफ से बात बता रहे हैं, श्रुत ज्ञान के पदों की बात यहाँ हो रही है, वो तो उनके नहीं होगा। हाँ उनके तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान बताए ना वहां सारे, द्विंद्रिय आदि उनको अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान बताया,
तो चतुर्विद्या तक अनक्षरात्मक ज्ञान होगा।
अक्षर श्रुत ज्ञान से उपरिम और पद श्रुत ज्ञान से अधस्तन, यानी जो पद के एक अक्षर कम वहां तक श्रुत ज्ञान के संख्यात विकल्पों की, यानी जो भेद है अक्षर समास यह संज्ञा है। इस अक्षर समास श्रुति ज्ञान के ऊपर एक अक्षर ज्ञान के बढ़ने पर पद नाम का श्रुति ज्ञान होता है। उक्त प्रकार के श्रुति ज्ञान की पद यह संज्ञा कैसे है? इतने 1634,83,78,888 हम 7,888 कहते हैं, 7,888 अक्षरों को लेकर द्रव्य श्रुत का एक पद होता है। इन अक्षरों से उत्पन्न हुआ भाव श्रुत भी उपचार से पद ऐसा कहा जाता है। यानी वो द्रव्य जो आगम है उसके पदों की बात है और उसको जाने वाला ज्ञान है
उसको,
हाँ, वो भाव श्रुत हुआ उसको भी पद ज्ञान कहते हैं। इस पद नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमित यानी प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर पद समास सामास नहीं पद समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार एक एक अक्षर आदि के क्रम से पद समास नामक श्रुत ज्ञान बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक संघात नाम का श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्यात पदों के द्वारा संघात नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। हमने संख्यात हजार भी देखा था जीवकांड में, उसमें यानी उसमें देखो ना पद फिर पद प्लस एक अक्षर दो अक्षर यानी 1634 करोड़ में उतने भी मिला तो दो पद हो जाएंगे, तीन पद हो जाएंगे, दस पद हो जाएंगे, हजार पद हो जाएंगे, तो फिर तब जाके संघात नामक हो जाएगा। चारों गतियों के द्वारा मार्गणा होती है, उनमें जितने पदों के द्वारा नरक गति की एक पृथ्वी निरूपित की जाती है उतने पदों की और उनसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान की संघात ऐसी संज्ञा होती है। यानी वो नरक गति के वर्णन का अभी श्रुत ज्ञान जो ओरिजिनल जो रचना है उसमें जो चार गतियों के द्वारा गति मार्गणा का वर्णन है तो उसमें एक गति मार्गणा कौन सी नरक गति की और वो भी एक पृथ्वी के जहाँ निरूपण है तो कितने हजारों पदों द्वारा होगा तो उसको संघात ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार सर्व गतियों का और सर्व मार्गणाओं का आश्रय करके कहना चाहिए यानी जिसमें एक एक मार्गणा का वर्णन है वो संघात पद है उसके अंदर। वो तो ओरिजिनल पद है कहाँ अभी इतना वर्णन है तो क्योंकि हमें अभी अवेलेबल कितना है अभी टोटल अवेलेबल थोड़े एक हमें तो थोड़े से ग्रंथ अवेलेबल है और वो भी उसके स्पष्टीकरण रूप से है। ओरिजिनल में कितने होना चाहिए माल इस संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमित श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर संघात समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार संघात समास नामक श्रुत ज्ञान तब तक बढ़ता हुआ जाता है जब तक एक अक्षर श्रुत ज्ञान से कम प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। अब तक क्या क्या देखे हमने याद है बोलो
पर्याय
समास
अक्षर
समास
पद
समास संघात समास और अभी प्रतिपत्ति देखते हैं। जितने पदों के द्वारा एक गति इंद्रिय काय और योग आदि मार्गणा प्ररूपित की जाती है उतने पदों की प्रतिपत्ति यह संज्ञा है। एक एक मार्गणा वहाँ मार्गणा के एक एक भेद बताए थे संघात में एक एक पूरी मार्गणा बताई। प्रतिपत्ति नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रतिपत्ति समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रतिपत्ति समास श्रुत ज्ञान ही बढ़ता हुआ तब तक चला जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम अनुयोग द्वार नामक अनुश्रुत ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहेंगे अनुयोग। 14 मार्गणाओं से प्रतिबद्ध जितने पदों के द्वारा जो अर्थ जाना जाता है, उतने पदों की और उनसे उत्पन्न हुए श्रुत ज्ञान की अनुयोग यह संज्ञा है। यानी 14 मार्गणाओं की मिलकर जो पूरा जो वर्णन है उसको कहेंगे अनुयोग। उस अनुयोग श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुयोग समास नामक श्रुत ज्ञान एक एक अक्षर की उत्तर वृद्धि से बढ़ता हुआ तब तक जाता है जब तक कि एक अक्षर से कम प्रावृत प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान प्राप्त होता है। यानी हमने देखा पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, फिर अनुयोग अनुयोग समास, अभी डबल प्रावृत लेना, प्रावृतक प्रावृतक लेना, नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। संख्यात अनुयोग द्वार रूप श्रुत ज्ञानों के द्वारा एक प्रावृत प्रावृत नामक श्रुत ज्ञान होता है। उस प्रावृत प्रावृत श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर प्रावृत प्रावृत समास नामक श्रुत ज्ञान उत्पन्न होता है। यही रुकते अभी हम, क्योंकि बाद में प्रावृत होगा,
वस्तु होगी,
वो वस्तु होगी और पूर्व होगी, बीच में उनके कितने का क्या वो सब हिसाब लगा लेंगे। जावानी से जानते सूझे लो कालो सोवानी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन
नमो ओरियंताणम नमो चिद्दा।